காலம் பிருந்தாரண புரந்தரம் ஸ்ரீகோவிந்தம் பிரபகேஹம் தீனானுகிரகாரகம் வந்தே முகுந்தமரவிந்ததலாயதாக்ஷம் குந்தேந்துசங்கதசலம் சிசுகோபவேஷம் இந்திராதிதேவகணவந்திதபாதபீடம் விருந்தாவனாலயமஹம் வசுதேவசூனம் நவஜலதரவரணம் சம்பகோத்பாசிகர்ணம் விகசிதநலினாசியம் விஸ்ஃபுரன்மந்தஹாசியம் கனகருசிதுகூலம் சாருவர்ஹாவசூலம் கமபி நிகில சாரம் நௌமி குமாரம் வம்சி விபூஷித கராநவநீரதாபாத் சீதாம்பராதர்ம பிம்பலாதருஷ்டாத் பூர்ணேந்து சுந்தர முகாதரவிந்த நேத்ராத் கிருஷ்ணாத் பரம் கிமபி தத்வமஹம் ந ஜானே த்யானாபியாஸ வசீகிருதேன மனசா தன்னிருணம் நிஷ்க்ரியம் ஜோதிஹ் கிஞ்சன யோகினோ யதி பரம் பஷ்யந்து கஷ்யந்து தே அஸ்மாகம் து தேவ லோசன சமத்காராய ஹூயாச்சிரம் காலிந்தீ புலினேஷு யத் கிமபி தன்னீலம் மஹோதாவதி. ஸ்ரீ மதுசூதன சரஸ்வதி நே கீதா பாஷ்யகே ஷோடஷ அத்யாய மே யே ஸ்லோக லிகா. 13वें अध्याय के भाष्य में उन्होंने ये श्लोक लिखा है. ध्यानाभ्यास वशीकृतेन मनसा तन निर्गुणं निष्क्रियं ज्योतिः किंचन योगिनो यदि परं पश्यन्ति पश्यन्तु ते अस्माकं तदेव लोचन चमत्काराय भूयाच्चरम் காலிந்தீ புலினேஷு யத் கிமபி தன்னீலம் மஹோதாவதி. வோ கஹதே ஹே பாய், தியான கே அப்யாஸ் சே ஜின்கா மன் வஷ் மே ஹோ கயா ஹே, வே அப்னே மன் கோ வஷ் மே கர்கே உஸ் நிர்குண நிஷ்க்ரிய ப்ரஹ்ம கா தியான கர்தே ஹே, தோ வோ கியா கரே படா அச்சா. ஓர் யோகி கிஞ்சன் யோகினோ யதி பரம் பஷ்யந்தி பஷ்யந்து தே, ஓர் யதி யோகி லோக் அப்னே விஷுத்த அந்தகரண மே பரமாத்மா கி ஜோதி கா தர்ஷன் கர்தே ஹே, தோ கியா கரே படா அச்சா. பஷ்யந்தி பஷ்யந்து தே, வே கியா கரே. அஸ்மாகந்து ஹமாரே லியே தோ, ஹம் லோகோ கே லியே தோ, அஸ்மாகந்து ததேவ லோச்சன சமத்காராய பூயாச்சரம் காலிந்தீ புலினேஷு ஜத் கிமபி தன்னீலம் மஹோதாவதி. ஹம் லோகோ கே லியே தோ யஹி வாஞ்சித ஹே ஹமேஷா, நின் ஹம் நிரந்தர் யஹி சாதே கி யமுனா ஜீ கே கினாரே பர் யமுனா தட் பர் எக் நீலா நீலா தேஜ் தௌடதா ஃபுதக்தா ரஹதா ஹே, வஹி ஹமாரி ஆன்கோ கோ சமத்கிருத் கர்தா ரஹே. ஈ மதுசூதன சுவாமி கே வாக்கிய ஹமலா, ஜோ அத்வைத சித்தி கே நிர்மாதா ஹே, பஹுத் படே வித்வான் வேதாந்த மே படே நிஷ்சித், பர் லுட் கயே பிச்சாரே, லுட் கயே, உன்னே குத் கா லுட் கயே. அத்வைத வீதி பதிக யுடுபாஸ்யா ஸ்வராஜ்ய சிம்ஹாசன லப்த தீக்ஷா சதேன் கேனாபி வயம் ஹதேன தாசி கதா கோப வது விட்டேன. அத்வைத மார்க்க பர் சல்னே வாலே சாதகோ கே லியே ஹம் உபாஸ் கரே. स्वराज सिंहासन पर दीक्षा हम प्राप्त कर चुके, ऐसे मामूली नहीं। स्वराज्य माने मोक्ष, मोक्ष साम्राज्य। पर हुआ क्या, लुट गए केन शठेन केनापि वयम हठेन, किसी शठ ने। ये शठ शब्द बड़े प्रेम का होता है भरा, ये शठ कैतव धूर्त, ये सब शब्द बड़े बड़े रस भरे शब्द होते हैं। तो किसी शठ ने हमको गोप वधुओं के साथ घूमने वाले किसी का दास बना दिया, दासी बना दिया। बड़ी सुंदर चीज है। एक दिन के बाद आप बैठे थे महाराज मधुसूदन स्वामी अपनी शाला में, बड़े अच्छे अच्छे विद्वान सब आते उनसे शिक्षा लेने, पढ़ने आते। और पढ़ाई कोई वो स्कूल कॉलेज की नहीं, निष्ठा की पढ़ाई। ये नहीं कि वो रूटीन जैसे पूरा करना हुआ, इतनी देर इसकी इसकी पीरियड, अपनी अपनी पीरियड में कोई बोल जाए, ये चीज नहीं। वो तो अधिकारी को शिक्षा दी जाती थी सदगुरु के द्वारा। हुआ क्या, एक दिन बड़ा ताज्जुब हुआ महाराज, बड़ा आश्चर्य हुआ। मधुसूदन स्वामी उपदेश कर रहे विद्वान शिष्यों को, उपदेश करते करते पहुंच गए किसी दूसरे राज्य में, पहुंच गए। अब ये भूल गए कि हम यहाँ पर उपदेश कर रहे हैं शिष्य मंडल विद्वानों का, हमारे सामने बैठा है, भूल गए। पहुंच गए ब्रज में और पहुंच गए नंद बाबा के आंगन में, पहुंच गए। वहां जो लीला देखी, देखकर मुग्ध हो गए, देखी स्वयं देखी, देख करके मुग्ध हो गए। बाहर निकले तो कोई सखी मिली, उससे बात करने लगे। तो बात करने में हुआ क्या, जैसे सपना किसी को आता है ना, सपने में बोल उठता आदमी, तो भाव राज्य में थे और जब बोलने लगे तो यहां बोल गए। तो शिष्य मंडल सामने बैठा और ये बैठे अपना, कुछ देर बोले नहीं। तो शिष्यों ने समझा कि हमें जो पाठ देना है इनको, उसका ये कुछ स्मरण कर रहे होंगे। उन्हें क्या पता कि कहीं पहुंच गए बादल आदमी। इतने में बोले रही सखी, शिष्यों ने देखा ये सखी कौन आ गई यहाँ पर ये क्या हो गया, सखी कौन आ गई, हम लोग सब बैठे हैं जी। गुरु जी बोले सुनो तो सखी, हमारी बात तो सुनो। ताज्जुब हो गया, क्या सखी बात सुनो, ये कैसी बात करते हैं। बोले महाराज हाथ जोड़े महाराज, अरे बोले सुनो, सुनो सखी कहूँ तो कम एकम, सुनो सखी कहूँ तो कम एकम, नंद निकेतांगने मया दृष्टम, मया दृष्टम गोधूल भूसरितांगो नृत्यति वेदांत सिद्धांत। सखी सुनो, हमने एक बड़ा तमाशा देखा है अभी। कौतुक मेकम, कौतुक माने तमाशा, तमाशा एक तमाशा हमने देखा। मया दृष्टम, सुनी हुई बात नहीं कहते हम, हमने आंखों देखा। मया दृष्टम, बोले महाराज कहाँ, बोले नंद बाबा के आंगन में देख के आया अभी। नंद निकेतांगने मया दृष्टम, नंद बाबा के घर के आंगन में, नंद निकेतांगने, निकेत कहते हैं घर को, नंद निकेतन के आंगन में एक तमाशा मैंने देखा। मैं देख के आया, क्या देखा, तो गोधूल भूसरितांगो नृत्यति वेदांत सिद्धांत। जिस वेदांत का मैं जानता, वो शिष्य लोग इसको यूं समझें कि गुरु जी कह रहे हैं कि जिस वेदांत का मैं उपदेश करता, उस वेदांत के सिद्धांत को नंद बाबा के आंगन में मैं नाचते देखता, नाच रहा था और गोरज से, गोधूल से उसके सारे अंग धूसरित हो रहे थे। गोधूल धूसरितांगो, गोधूल से अंग उसका धूसरित था, धूमिल हो गया था, और वो नाच रहा था। कौन? वेदांत सिद्धांत। तो ये ऐसी चीज है महाराज, सवेरे यही चर्चा हो रही थी ना अंत में। तो जब तक उस तरफ चित्त नहीं खींचता, जोलो तो नंद को कुमार ना ही दृष्टि पर्यो, तोलो तू बैठ भले ब्रह्म को बिचारे ले। जब तक वो नंद नंदन दिखता नहीं, आंख के सामने कभी उसकी झांकी नहीं आई, तब तक ब्रह्म ब्रह्म किए जाओ। और वो झांकी यदि सामने आ गई, उसके बाद तो दूसरा कोई रहेगा नहीं उसके सिवा, तो एक ही रहेगा। हमने अभी देखा यहां कोई था, नारायण वा रूप में छके रहे जिन रहे, छके रहे। वो छक जाता है ना, बोले और कोई चीज चाहिए, बोले क्या करूं, छक गए बिल्कुल, गले तक भर गया, अब किसी के लिए गुंजाइश रही नहीं। तो भगवत रूप सौंदर्य, भगवत प्रेम सुधा रस, ये प्राप्त होता नहीं, हुआ नहीं। ये प्राप्त हो जाए तो सोचे कौन फिर? सोचने विचारने की चीज जो है ये तो रहती है तब जब सोचने विचारने की हृदय में गुंजाइश हो। बोले मन लगाओ और मन हटता नहीं, ये बड़ा अंतर है ना। कहीं तो मन लगाना पड़ता है भाई, अभ्यास के द्वारा किसी प्रकार से मन को लगाओ, और कहीं ऐसी दशा हो जाए कि मन हटे नहीं। तो ऐसा माना है और ऐसा भक्तों का प्रेमियों का अनुभव है कि भगवान के रूप सौंदर्य की झांकी यदि किसी तरह किसी को कभी जरा सी भी हो जाए तो ये बड़ा सहज रास्ता है। सहज इसलिए है कि ये इस प्रकार का एक जादू होता है कि दूसरी सारी प्रवृत्तियों को बलात्कार से मिटा देता है, रोक नहीं देता, मिटा देता है। तो इसीलिए ऐसा होता है कि भगवान के रूप सौंदर्य का, भगवान के प्रेमानंद सुधा रस का स्मरण किया जाए, उसका ध्यान किया जाए। ये महाराज अभी जो मैं श्लोक बोल गया, इससे पहला श्लोक है मधुसूदन स्वामी का। मधुसूदन स्वामी ने एक तत्व की बात कही, कहा मैं तत्व की बात कहता हूं, तत्व नाम लिया वहां पर, और तत्व नाम लेके उसको केवल श्री कृष्ण नाम लेकर नहीं रह गए। श्री कृष्ण को तो शायद कोई निराकार निर्गुण ब्रह्म के रूप में मान ले, तो उसको खोल दिया कि ऐसे कृष्ण का। तो बंशी विभूषित करार लवनीय दाभात पीतांबरात अरुण बिंब फलाधरोष्ठात पूर्णेन्द्र सुंदर मुखात अरविंद नेत्रात कृष्णात परम किमत तत्व अहम न जाने। वो कहते हैं कि वंशी विभूषित करार, जिसके कर कमलों में वंशी विभूषित है, नवनीरदाभास नवीन मेघ के समान जिनका सुंदर नील श्याम वर्ण है, पीतांबरात जो पीत पट पहने हुए हैं, और अरुणबिंब फलाधरोष्ठात जिनके अधरोष्ठ जो हैं ये बिंबा फल के समान लाल लाल हैं, पूर्ण सुंदर मुखात पूर्णिमा के चंद्रमा के समान जिनका सुंदर मुखमंडल है, अरविंद नेत्रात जिसके कमल के समान नेत्र हैं, उन भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त किसी तत्व को मैं नहीं जानता। जानते हो जानते, इसीलिए फिर अगले श्लोक जो अगला श्लोक मैंने कहा अभी, उसने कहा जो जानते हो जानते हैं, जानते हैं, उनका विरोध नहीं। अपने लिए ये बात है। तो ये कल जो मैं शाम को बात कही थी उसका यही तात्पर्य था, वो वही सिलसिला है ये, कि भगवान के स्वरूप का लीला का चिंतन अपने मन के अनुसार करें। अपने मन में जितने भी अधिक से अधिक सौंदर्य की कल्पना हम कर सकते हैं, जितने भी अधिक से अधिक पवित्र सौंदर्य का हम अपने मन में चित्र खींच सकते हैं, पवित्र सौंदर्य। एक बात बहुत देखने की है कि जो सौंदर्य, जो प्रेम हमारे मन में विषयाशक्ति पैदा कर दे, वो भगवत प्रेम नहीं है, वो भगवत रस नहीं है, ये कसौटी है। इस पर कस ले। चैतन्य महाप्रभु का जीवन, इतने बड़े वो महान रसिक कि रास पंचाध्यायी के अतिरिक्त भागवत का और कोई प्रसंग ही प्राय वो न ले, और उनके जो खास खास शिष्य रहे, जीव गोस्वामी, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, इनके जो संस्कृत के ग्रंथ हैं, दार्शनिक ग्रंथ हैं, बड़े भारी ये फिलोसफर थे, उन सब में केवल प्रेम तत्व का वर्णन है, परंतु त्याग के तन रूप गोस्वामी ने, सनातन गोस्वामी ने, जो पहले करोड़ों की संपत्ति के अधिपति थे, एक कोपी एक मिट्टी का करवा ये तो रखा अपने पास सामग्री के रूप में, और जीवन को निभाया कैसे, छत के नीचे तो रहे ही नहीं, मकान में छत के नीचे रहे ही नहीं, वृक्षों के नीचे रहे, और वृक्ष भी रोज बदला, आज एक पेड़ के नीचे, कल दूसरे के नीचे, इतना भारी उनका त्याग, विषयाशक्ति का कहीं किसी प्रकार का संसर्ग नहीं, मिलते नहीं थे स्त्री जाति से, ये उनकी चीज थी, और उनके यहाँ तक था स्त्री को स्त्री नहीं कहते थे, बहुत आगे उनकी चीज ये बढ़ गई, वो प्रकृति कहते थे, स्त्री कहने में भी समझते थे कि कहीं कोई संसर्ग ना आ जाए, प्रकृति कहते। जीव गोस्वामी एक मीराबाई से मिले, किसी से नहीं मिले, मीरा गई वृंदावन में, तो मीरा ने जा करके कहलवाया, वो अपना कुटिया में बंद है, तो ये कहा कि किसी ने कहा कि देवी मिलने आई है, कभी हमको प्रकृति के दर्शन नहीं कर, कह दिया। तो मीरा तो बड़ी भक्ता है, मीरा ने कहा महाराज एक मेरी प्रार्थना यह है, मुझे शंका हो गई, मैंने ये मान रखा था कि ब्रज में तो पुरुष एक ही है, सारी प्रकृति ही प्रकृति है, आप दूसरे कोई पुरुष कहाँ से पैदा हो गए यहाँ पर जो प्रकृति से नहीं मिलते। तो जब ये बात सुनी तो जीव ने कहा भाई ये प्रकृति नहीं, ये पुरुष ही, तो आने दो, समझे। तो इतना बड़ा उनका त्याग, विषयाशक्ति से इतनी उनकी सावधानी, परंतु प्रेम रसास्वादन, सौंदर्य आस्वादन उनके संस्कृत के ग्रंथों को किसी ने देखा है तो वो जानते हैं कितना उसमें रस मिल गया, रस बह रहा है उनमें, उनके भागवत स्थिति का वैश्विक है, इधर मिलते नहीं। उनके जो कई ग्रंथ हैं, वृंदावन चंपू है, एक नाथ ग्रंथ है, दग्ध माधव है, ऐसे बढ़िया बढ़िया उनके ग्रंथ हैं, कब संदर्भ है भागवत पति का, भद्रशाम सिंधु है, ऐसे महान ग्रंथ हैं। मतलब कहने का यह है कल वाले सिलसिले में कि सबसे बढ़िया तो जहाँ पर कोई भय नहीं गिरने का, श्री कृष्ण के बाल रूप का चिंतन, बाल माधुरी और बालनी, जहाँ किसी प्रकार का भय ही नहीं, भाई श्री कृष्ण के निकुंज लीला का ध्यान करने में डर है, क्योंकि हम लोग अभी तक विषयों से विमुक्त नहीं हुए, परंतु बाल लीला बिल्कुल निर्दोष, भगवान की बाल लीला का जो सौंदर्य है, ये महाराज ऐसा विलक्षण है कि कुछ कहा नहीं जाता इसके संबंध में कि ये कितना मधुर है, कितना मधुर है, इसके माधुर्य का कोई पता नहीं, जिसने इस माधुर्य की तरफ जरा सा भी उनकी कृपा से ही अपने को बढ़ा पाए। और इस माधुर्य की जब जब कभी कहीं झांकी हुई तो त्यागना पड़ा नहीं। जहां त्याग कठिन होता है ना महाराज, वहां जिसके लिए हम त्याग करते हैं उस वस्तु का महत्व नहीं हमारे मन में। क्या करें भाई, त्यागना पड़ता, हमने इतना बड़ा त्याग कर दिया इसके लिए, तो उस त्याग की जिस वस्तु का क्या उसकी महत्ता बनी हमारे मन में, तो वो त्याग त्याग नहीं। जिस वस्तु को हमने छोड़ा उसके महत्व को नहीं छोड़ा। एक राजा रहे तो वो सन्यासी हो गए, सब कुछ छोड़ था, बड़े सच्चे आदमी थे, सन्यासी हो गए। तो ऋषिकेश दुकानदारी हो गया, हम लोगों की दुकान खुल गई यहाँ पर देखिए, और बहुत ऐसे ही। तो पहले ये लोग ऐसी चीज नहीं थी, तो सच्ची चीज थी। तो मृत लोग आते थे ऐसे स्थानों में, तो राजा भी ऐसे स्थान में अपना गए, रहने लगे, बड़े अच्छे पुरुष सच्चे। तो वृद्ध महात्मा रहते थे वहां पर। एक दिन वो अन्य सत्र से कहीं से रोटी लेकर वो नवीन सन्यासी महात्मा जा रहे थे, पीछे से बूढ़े सन्यासी गए, उन्होंने जाकर उन्हें धक्का दिया, कोहनी का धक्का दिया, तो रोटी गिर पड़ी। रोटी गिरी तो उन नवीन सन्यासी ने उठाकर सोच लिया, तो क्षोभ हो गई। फिर आगे गए तो फिर वो पीछे जाकर फिर धक्का दिया, फिर रोटी गिरी, उठा करके हाथ जोड़े, बोले महाराज बड़ी कृपा आपकी, आप मेरी परीक्षा करते हैं, आपका बड़ा अनुग्रह है। फिर आगे बढ़े, फिर धक्का दिया, तीसरी बार रोटी की चढ़ने गिरी, उठा लिया, पूछ लिया, हाथ जोड़ लिए, चरण पकड़ लिए, कहा महाराज बड़ी कृपा आपकी है, आप मुझे पक्का कर रहे हैं, लेकिन महाराज मैं इतना बड़ा राज्य त्याग करके आ गया, अब इस रोटी के लिए मेरे मन में क्या क्षोभ होता भला। तब वृद्ध महात्मा हंसे, बोले भाई इसीलिए रोटी गिराई थी मैंने कि तुमको बड़े भारी राज्य के त्याग की स्मृति है और उसको बड़ा भारी समझते हो। राज्य का त्याग किया पर राज्य की महत्ता का त्याग नहीं किया, तो उस त्याग का भी त्याग कर दो तब तुम असली त्यागी होगे, नहीं तो तुमको उस त्याग की स्मृति है, त्याग का जो सुख है जो भोग उसे तुम भोग रहे हो, ये होता है त्याग रूपी भोग होता है और भोग में भी त्याग होता है, ये बड़ा अंतर है। उपनिषद में आया तेन चक्के रघुंजी था मागदकसस्विद्धनं, उपनिषद कहता है ये इनका मंत्र है, त्याग पूर्वक भोग करो, त्याग पूर्वक भोग, और भोग पूर्वक त्याग होता है कि कहीं त्याग की महिमा हो जाए, उन महिमा का भोग करें। तो वास्तविक त्याग नहीं होता, लेकिन एक ऐसा त्याग होता है जो त्याग जबरदस्ती होता है, वो त्याग होता है आसक्ति का। आसक्ति को नाम अच्छा नहीं है, बुरा नाम, सब कहते हैं आसक्ति त्याग करो, आसक्ति त्याग करो, पर आसक्ति त्याग की वस्तु नहीं है, पर कहीं पर आसक्ति और कामना भी बढ़िया वस्तु हो जाती है। तो इसीलिए भक्ति के दो प्रकार बताए, एक वैधी भक्ति है, एक रागानुगा भक्ति है, एक विधि की भक्ति, एक आसक्ति की भक्ति। एक भक्ति वो कि जो करनी चाहिए अमुक फल मिलेगा इसलिए करनी है, एक भक्ति वो जो किए बिना रहा नहीं जाता, मन फंस गया, ये तो मन फंस गया, उस भक्ति का नाम है रागात्मिका भक्ति। और वो रागात्मिका भक्ति मानी गई है ये जो ब्रज के अवध के जहाँ कहाँ से ये भगवान के साथ जो संबंध रखने वाले महापुरुष हो गए हैं उनकी, दशरथ की भक्ति, नंद बाबा की भक्ति रागात्मिका भक्ति, यशोदा मैया की भक्ति रागात्मिका भक्ति, ब्रज सखाओं की भक्ति रागात्मिका भक्ति, ये ब्रज सीमंतनियों की भक्ति रागात्मिका भक्ति, इनके अलग भेद हैं, ये कभी बताए जा सकते हैं। शांत दास्य सख्य वात्सल्य और मधुर, मधुर के फिर अनेक स्तर और हैं। तो इनकी भक्ति की नकल जिनने की जाए उसे कहते हैं रागानुगा भक्ति, रागात्मिका नहीं रागानुगा भक्ति। तो रागानुगा भक्ति है आसक्ति की भक्ति, सौंदर्य में उनके स्वभाव में
उनके शील में, उनके रूप में मन फंस गया। अब वहाँ जहाँ मन एक में फंसा, दूसरे से अपने आप हटा। तो जहाँ एक में जितनी फंसावट अधिक हुई, दूसरे में उतनी अधिक निकली, और एक में पूरी हो गई, सबसे निकल गई। तो ये भगवान की बाल लीला का जो चिंतन है, ध्यान है, ये एक बड़ी जादू की चीज है। अगर ये आदमी करने लगे और कहीं वो बाल रूप की झांकी वास्तविक हो जाए। कल मैंने निवेदन किया था, ये मैं थ्योरी की बात नहीं कहता, मैं अगर ये भी कह दूँ कि अनुभव के कहता हूँ, कभी चुपते नहीं है, ये सच्ची का चीज है। तो वो निवेदन किया था मैंने कल एक, कि आप भगवान के बाल रूप का ध्यान कीजिए, अपने बच्चों की खेल की तरह। कोई बात नहीं, कैसे खेलते हैं, होगा क्या कि भगवान सत्य हैं और सर्व भवन समर्थ है, सब कुछ बन सकते हैं। आपके ध्यानानुरूप सचमुच वो बन जाएंगे, और जब वो बन जाएंगे तो विलक्षणता उसमें ऐसी आएगी जो अपने आप बरबस आपको खींच लेगी, सबसे ज्यादा टूट जाए। ये आपकी मतलब भागवत की, और जिन्होंने ब्रह्म मोहन लीला को देखा है, पढ़ा है, वो जानते हैं कि जब गोवत्सों को और बालकों को ब्रह्मा हर के ले गए और छिपा दिया, तो उनके बदले में बछड़े और बालक श्री कृष्ण बन गए। बछड़े बालक ही नहीं बन गए, जितनी चीजें थी उनकी, लकुटिया भी और छींके भी और जूते भी और वो सिंगा भी, सब कुछ वो बन गए। वहाँ भागवत का वर्णन आता है कि उनके बन जाने के बाद उन बच्चों में माताओं का वो आकर्षण हो गया जो श्री कृष्ण ने था। बड़ी बड़ी गायों का, जिनके दो दो तीन तीन उसके बाद बच्चे हो चुके, वे गायें उन बच्चों को देख करके आकर्षित हो गई, क्योंकि वो भगवान का स्वरूप उसमें आके